एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम मोहम्मद अली के जीवन और उनके अनुभवों की गहराई में उतर रहे हैं, और ये जानकारी आधारित है उनकी अपनी आत्मकथाओं पर, द ग्रेटेस्ट, माई ओन स्टोरी और माई स्टोरी। ये स्रोत हमारे एक श्रोता ने हमें दिए हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए अली के संघर्षों को समझना, रिंग के अंदर भी और बाहर भी, उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के नज़रिए से। मतलब हम सिर्फ एक महान बॉक्सर की बात नहीं कर रहे, हम उस शख्सियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने दुनिया पर, आप कह सकते हैं, एक अमिट छाप छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं।
हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अली को सिर्फ खेल के चश्मे से ना देखें। वो यकीनन एक असाधारण, बहुत ही कमाल के बॉक्सर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा ये स्रोत बताते हैं, उनका कद, उनका महत्व कहीं ज़्यादा बड़ा था। वो 20वीं सदी के एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक हस्ती थे। इन किताबों का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि अली की पूरी ज़िंदगी एक तरह से आत्मपरिभाषा, धार्मिक आज़ादी और नस्लीय न्याय के लिए एक लगातार लड़ाई थी, और ये लड़ाई अमेरिकी समाज की ताकतवर धाराओं के खिलाफ थी। उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ रिंग के बाहर लड़ी गईं। ये बात उनके अपने शब्दों में बार बार आती है।
तो चलिए उनकी कहानी के शुरुआत से ही इस सफ़र को समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि अली का बचपन, जब उनका नाम कैसियस क्ले था, वो 1940s और 50s में लुईविल, किंटकी में बीता, और वो जगह उस वक्त नस्लीय अलगाव का, मतलब सेग्रीगेशन का, एक गढ़ थी।
हाँ।
उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वो सिर्फ 12 साल के थे। उनकी साइकिल चोरी हो गई और वो गुस्से में पुलिस ऑफिसर जो मार्टिन के पास गए, कहा कि चोर को पीटना है।
अच्छा।
मार्टिन, जो संयोग से एक बॉक्सिंग कोच भी थे, उन्होंने कहा ठीक है, मगर पहले लड़ना तो सीख लो। और बस
वाह,
वहीं से बॉक्सिंग की दुनिया में उनका पहला कदम पड़ा।
और ये शुरुआती साल, जैसा उनकी आत्मकथाओं में जिक्र है, नस्लवाद के कड़वे अनुभवों से भरे थे, बहुत ज्यादा।
एक घटना तो बहुत ही, मतलब, दिल को छूने वाली है। 1960 की रोम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता उन्होंने।
हाँ, बिल्कुल।
और उसके बाद भी अपने ही शहर लुईविल में एक रेस्टोरेंट ने उन्हें खाना परोसने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अश्वेत थे।
ओह।
गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद।
हाँ। और ये घटना, जैसा वो लिखते हैं, उनके जहन में बहुत गहराई तक उतर गई। उन्हें लगा कि ओलंपिक गोल्ड मेडल भी उन्हें बराबरी नहीं दिला सकता, खेल की सफलता ही सब कुछ नहीं है।
सही कहा। फिर उनका प्रोफेशनल बॉक्सिंग का सफर शुरू हुआ, और यहाँ एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि उनका वो मशहूर बड़बोलापन,
वो तो बहुत फेमस था,
उनकी वो तुकबंदी वाली भविष्यवाणियां, ये सब सिर्फ दिखावा नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी।
अच्छा, मतलब जानबूझकर करते थे।
हाँ, जैसा वो खुद इशारा करते हैं, इसका इस्तेमाल वो मीडिया का ध्यान खींचने के लिए करते थे, अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए। और उस समय के जो अश्वेत एथलीट थे, उनकी जो एक दबी सहमी इमेज थी, उसको तोड़ने के लिए।
ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
और फिर आया 1964 का वो ऐतिहासिक मुकाबला, जब उन्होंने सबको चौंका दिया, हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन को हरा दिया।
हाँ, शेक अप द वर्ल्ड।
बिल्कुल, उनके अपने शब्दों में, मैंने दुनिया को हिला दिया।
वो सिर्फ एक बॉक्सिंग मैच की जीत नहीं थी, वो एक तरह की घोषणा थी, एक स्टेटमेंट था। और उसके फौरन बाद एक और बड़ी घोषणा हुई जिसने खेल जगत और अमेरिकी समाज में, कह सकते हैं, भूचाल ला दिया।
हाँ, कौन सी?
जीत के अगले ही दिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से माना कि वो नेशन ऑफ इस्लाम, NOI के सदस्य बन गए हैं।
ओह, फौरन बाद।
हाँ, उन्होंने बताया कि एलिजा मोहम्मद की शिक्षाओं और मैल्कम एक्स के विचारों ने उन्हें अश्वेत होने पर गर्व करना सिखाया है, आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया है। और उस समय NOI अपने कुछ विचारों की वजह से काफी विवादास्पद संगठन माना जाता था, तो एक उभरते हुए चैंपियन का उससे जुड़ना कई लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था।
और इसी मोड़ पर उन्होंने अपना नाम बदलने का फैसला किया है ना?
बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक उन्होंने कैसियस क्ले नाम को गुलामी का नाम कहा, उसे छोड़ दिया और मोहम्मद अली नाम अपनाया। उनके लिए अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को अपनाने जैसा था, उनकी असली पहचान।
लेकिन इस फैसले ने बहुत विवाद खड़ा कर दिया। मीडिया, खेल प्रशासक, आम लोग, बहुत से लोग उन्हें इस नए नाम से स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।
हाँ, ये एक और लड़ाई बन गई उनके लिए। और यहीं से उनके मूल दर्शन और जीवन मूल्यों की परतें खुलती हैं, जैसा इन स्रोतों में दिखता है। सबसे पहली और शायद सबसे अहम चीज है पहचान। आत्मनिर्माण का ये संघर्ष, अपना नाम खुद चुनना, अपनी पहचान दुनिया के सामने रखना, चाहे दुनिया माने या ना माने। उनका एक मशहूर कोट है जो शायद इसी भावना को दिखाता है, मैं अमेरिका हूं, मैं वो हिस्सा हूं जिसे आप पहचानना नहीं चाहते, पर मेरी आदत डाल लो।
वाह, क्या बात है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक चुनौती थी।
बिल्कुल।
और सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा, वो भी कमाल की थी। ये बात साफ दिखती है कि उन्होंने अपने उसूलों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। करियर, पैसा, शोहरत,
टाइटल भी।
हाँ, वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल तक। जब वियतनाम युद्ध में जाने से इनकार करने का वक्त आया तो उन्होंने वो रास्ता चुना जो मुश्किल था लेकिन उनके जमीर के मुताबिक सही था।
सही, सुविधा पर दृढ़ विश्वास को तरजीह देना, ये उनकी शख्सियत का एक बहुत अहम हिस्सा था।
निश्चित रूप से, उनकी आध्यात्मिकता, नेशन ऑफ इस्लाम और बाद में इस्लाम के प्रति उनकी आस्था, वो उनके लिए ताकत का एक बड़ा जरिया बनी, खासकर मुश्किल वक्त में।
और नस्लवाद के खिलाफ उनका संघर्ष, वो सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव तक नहीं रुका, वो इसे एक बड़े सिस्टमिक अन्याय के तौर पर देखते थे और उसके खिलाफ आवाज उठाते थे बिना डरे।
और हाँ, शब्दों की ताकत का इस्तेमाल। मनोवैज्ञानिक युद्ध में तो उनका कोई सानी नहीं था।
हाँ, वो तो था।
वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने प्रतिद्वंदी के दिमाग पर हावी होने की कोशिश करते थे, ये उनकी रणनीति का हिस्सा था।
उन्होंने अश्वेत पुरुषत्व और ताकत की परिभाषा को भी एक तरह से बदल दिया।
कैसे?
वो मुखर थे, अपने विचारों को लेकर एकदम क्लियर थे, गौरवान्वित थे और राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक। उस दौर के ज्यादातर अश्वेत एथलीटों की इमेज से ये बिल्कुल अलग था।
सही बात है। उन्होंने दिखाया कि एक एथलीट सिर्फ अपने खेल तक ही सीमित नहीं रह सकता, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।
और हाँ, उनकी बॉक्सिंग की कला और बुद्धि को भी नहीं भूलना चाहिए। वो सिर्फ ताकत के बल पर नहीं लड़ते थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
उनकी रणनीति, उनकी फुर्ती, उनका रिंग मैनेजमेंट कमाल का था। तितली की तरह उड़ो, मधुमक्खी की तरह काटो।
हाँ, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी।
ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उनकी पूरी फिलॉसफी थी। ये दिखाता है कि रिंग के अंदर भी वो कितने तेज दिमाग वाले रणनीतिकार थे। स्रोत बताते हैं कि वो अपने विरोधियों का बहुत गहराई से अध्ययन करते थे।
चलिए अब बात करते हैं उन तीन निर्णायक मोड़ों की जिन्होंने अली के जीवन की दिशा ही बदल दी। इनको छोटी कहानियों की तरह देखते हैं जैसा स्रोतों में वर्णन है। पहला मोड़ तो शायद वही था, सोनी लिस्टन पर वो जीत और उसके तुरंत बाद धर्म परिवर्तन और नए नाम की घोषणा।
हाँ, बिल्कुल।
इस एक घटना ने उन्हें रातों रात एक पॉपुलर युवा एथलीट से एक कह सकते हैं बेहद विवादास्पद राष्ट्रीय शख्सियत बना दिया।
सही। और दूसरा अहम मोड़ आया 1966-67 में, जब उन्होंने वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिकी सेना में भर्ती होने से साफ इनकार कर दिया। उनका वो बयान आज भी गूंजता है, मेरा वियतकोंग से कोई झगड़ा नहीं है, किसी वियतनामी ने मुझे कभी नीग्रो कहकर नहीं पुकारा।
क्या जबरदस्त बात कही थी।
हाँ, लेकिन इस इनकार के नतीजे बहुत गंभीर हुए। उनका हैवीवेट टाइटल छीन लिया गया, बॉक्सिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उन्हें लगभग 3.5 साल तक रिंग से बाहर रहना पड़ा, वो भी उनके करियर के पीक पर।
सोचिए जरा,
उन पर ड्राफ्ट से बचने का मुकदमा चला, सजा भी सुनाई गई।
ये उनके लिए सिद्धांतों और जमीर की लड़ाई थी और उन्होंने इसकी भारी कीमत चुकाई। ये 3.5 साल उनके लिए एक निर्वासन जैसे थे, जैसा वो अपनी किताब में बताते हैं।
बिल्कुल।
हालांकि बाद में 1971 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को पलट दिया। ये माना कि उनके इनकार का आधार उनका धार्मिक विश्वास था, लेकिन वो जो वक्त गुजरा उसने अली को और मजबूत बना दिया।
हाँ, शायद। और तीसरा महत्वपूर्ण मोड़ जिसने उनकी विरासत को हमेशा के लिए कर दिया, वो था 1974 का रंबल इन द जंगल।
जायर में।
हाँ, जायर में। मुकाबला उस समय के अजय माने जाने वाले हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज फोरमैन से।
फोरमैन युवा थे, बहुत ताकतवर थे और अली को लगभग सबने खत्म मान लिया था।
अंडरडॉग थे वो।
बिल्कुल, बड़े अंडरडॉग। लेकिन जायर पहुंचते ही माहौल बदल गया। वहां के लोग अली के साथ थे, नारे लगा रहे थे, अली बोमा ये,
अली उसे मार डालो।
हाँ, और इसी मुकाबले में अली ने अपनी मशहूर रोपे डोप रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसका जिक्र वो अपनी आत्मकथा में करते हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी बहुत जोखिम भरी चाल थी।
हाँ, बहुत रिस्की था।
वो जानबूझकर रिंग की रस्सियों पर टिक गए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और फोरमैन को अपने ऊपर मुक्के बरसाने दिए।
फोरमैन गुस्से और जोश में मारते रहे और थकते गए।
और फिर आठवें राउंड में जब अली को लगा कि फोरमैन पूरी तरह थक चुके हैं, उन्होंने अचानक हमला बोला और फोरमैन को नॉकआउट कर दिया।
क्या मोमेंट रहा होगा वो,
अविश्वसनीय।
ये सिर्फ एक टाइटल की वापसी नहीं थी, ये उस टाइटल की वापसी थी जिसे उनसे अन्याय से छीना गया था। ये उनके सिद्धांतों की जीत थी, उनके संघर्ष की जीत थी, उनकी जबरदस्त वापसी की कहानी थी।
बिल्कुल,
इस जीत ने उन्हें सिर्फ एक महान चैंपियन नहीं बल्कि दृढ़ता, साहस और अपने विश्वासों पर टिके रहने वाले एक ग्लोबल सिंबल के रूप में स्थापित कर दिया।
अली के जीवन के ये उतार चढ़ाव, ये संघर्ष, ये जीतें आज हमें क्या सिखाती हैं? अगर हम उनके अनुभवों को देखें, नस्लवाद का सामना करना, करियर के पीक पर निर्वासन झेलना, लगातार आलोचना सहना,
हाँ,
और फिर वापसी करके शिखर पर पहुंचना, दुनिया भर में सम्मान पाना, तो इसमें आज के दौर के लिए भी गहरे मानवीय सबक छिपे हैं।
बिल्कुल छिपे हैं। और यहाँ ये सवाल उठता है कि प्रामाणिकता यानी अपने असली स्वरूप पर टिके रहने की कीमत क्या है और उसका इनाम क्या मिलता है। अली का जीवन दिखाता है कि अपने सच के साथ खड़े होने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक नुकसान, करियर दांव पर लगना, सब कुछ। लेकिन शायद अंत में यही चीज आपको स्थायी सम्मान और गहरा प्रभाव छोड़ने की ताकत देती है। बाहरी दबाव के बावजूद अपने विश्वासों पर टिके रहने की उनकी क्षमता वह असाधारण थी।
और उनकी वापसी करने की क्षमता, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, 3.5 साल रिंग से दूर रहने के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से वापसी करना और फिर से दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल जीतना,
ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता।
हाँ, ये दिखाता है कि हार मान लेना उनके शब्दकोश में था ही नहीं।
और नहीं था। और एक और अहम बात, उन्होंने अपने मंच का, अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया बल्कि बड़े सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए किया। उन्होंने दिखाया कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली जरिया भी हो सकता है।
सही बात है।
और फिर उनके जीवन के बाद के वर्षों में, जब वो पार्किंसंस रोग से जूझ रहे थे, उनका शांति और मानवता के लिए एक वैश्विक राजदूत के रूप में उभरना, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनका वो कथन याद आता है, दूसरों की सेवा करना इस धरती पर आपके रहने का किराया है।
बहुत खूब।
ये उनके एक योद्धा से एक मानवतावादी बनने के सफर को दिखाता है।
तो इस पूरी चर्चा और इन स्रोतों से मिले ज्ञान के आधार पर अगर हमें 3 मुख्य निष्कर्ष निकालने हों जो सीधे अली के शब्दों और अनुभवों से आते हैं, तो वो क्या होंगे? मतलब क्या निचोड़ निकलता है? पहला, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। जैसा उनकी आत्मकथाओं से पता चलता है, बाहरी दुनिया का जबरदस्त विरोध, टाइटल छिन जाना, सालों का निर्वासन, इन सबके बावजूद अपने गहरे विश्वासों पर टिके रहने के लिए जिस अपार व्यक्तिगत साहस और आंतरिक शक्ति की जरूरत पड़ी होगी, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
हाँ, वो हिम्मत।
ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक गहरा भावनात्मक और मानसिक संघर्ष था जिसका जिक्र वो करते हैं। दूसरा, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। अली ने कितनी चतुराई और रणनीति से अपने पब्लिक परसोना, अपने शब्दों, अपनी कविताओं और यहां तक कि अपनी अनोखी बॉक्सिंग स्टाइल, तितली की तरह उड़ो, का इस्तेमाल किया।
हाँ, सब कुछ कैलकुलेटेड लगता है।
ये सिर्फ खेरन जीतने के लिए नहीं था, ये अपनी पहचान गढ़ने, नस्लवाद को चुनौती देने और अश्वेत गौरव को स्थापित करने का एक सोचा समझा तरीका था। जैसा उनके उस कथन से जाहिर होता है, मैं अमेरिका हूँ, मेरी आदत डाल लो। उनके हर एक्शन के पीछे एक तेज दिमाग और एक स्पष्ट मकसद नजर आता है। और तीसरा, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, आत्मविश्वास की ताकत और खुद को परिभाषित करने का महत्व। उनका बार बार कहना मैं महानतम हूँ सिर्फ डींग हांकना नहीं था।
नहीं, वो एक तरह की सेल्फ अफर्मेशन थी।
बिल्कुल, ये खुद को प्रेरित करने और दुनिया को यकीन दिलाने का एक जरिया था कि वो क्या हासिल कर सकते हैं। साथ ही समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी। जैसा उन्होंने कहा, मुझे वो नहीं बनना है जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं। मैं वो बनने के लिए स्वतंत्र हूं जो मैं बनना चाहता हूं।
क्या बात है।
और उनका ये विचार कि असंभव सिर्फ एक बड़ा शब्द है जिसे छोटे लोग बड़ी चुनौतियों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं,
ये हमें अपनी सीमाओं को लगातार चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है।
ये निष्कर्ष वाकई उनके जीवन और उनकी सोच के सार को पकड़ते हैं। और अगर हम इन स्रोतों पर आधारित एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न पर गौर करें, तो वो ये हो सकता है, अली में जो एक अनोखा संगम था, खेल प्रतिभा, अटूट सिद्धांतों पर टिके रहने का साहस और खुद को प्रस्तुत करने की असाधारण कला, क्या आज के इस बेहद पोलराइज्ड मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में वैसा कुछ संभव है या दोहराया जा सकता है?
मुश्किल सवाल है।
या फिर एक एंटरटेनर होने और एक उसूल पसंद शख्सियत होने के बीच जिस तनाव और कश्मकश से अली गुजरे, वो आज के प्रभावशाली लोगों, चाहे वो एथलीट हों, कलाकार हों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनके लिए क्या मायने रखता है?
हाँ, ये प्रासंगिक है। उन्हें अपनी प्रसिद्धि, अपने मंच और अपने सिद्धांतों के बीच संतुलन कैसे साधना चाहिए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर उनके जीवन की रोशनी में सोचना दिलचस्प होगा।
बहुत ही प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल। इस गहरी और सार्थक चर्चा के लिए और इन स्रोतों के बारीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
और हमारे श्रोता का भी शुक्रिया जिन्होंने मोहम्मद अली पर यह महत्वपूर्ण सामग्री हमारे साथ साझा की। इससे हमें उनकी कहानी को उनके ही शब्दों में समझने का मौका मिला। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।